بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الحاقہ کا خلاصہ کریں گے اور اس میں سے جو بات ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ آج مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے ہم اس زندگی کو کیسے گزاریں کہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے حسرت کا ذریعہ نہ ہو اور آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی بہار قرآن کے ساتھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہم مسلمانوں کو ایک بڑا خوبصورت مینول آف گائیڈ دیا جس کو میں اور آپ القرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پیار سے کبھی الکتاب کہا کبھی اس کو قرآن کہا کبھی شفا کہا آپ سب ماشاءاللہ بچپن سے قرآن سنتے پڑھتے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف ناموں کا ذکر کیا ہے اور یہ بات تھوڑی سی میں بتا دیتی ہوں کہ ہر نام کے پیچھے ایک معنی بھی ہے کہیں اس کو ذکر کہا ریمائنڈر کے طور پر کہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کہا بل ہوا کلام اللہ تو اگر کسی انسان کو خوش رہنا ہے میں تو اپنی بات بالکل سٹریٹ فارورڈ اس بات سے شروع کرنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ ایک خوشیوں بھری زندگی چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس کا سرا جو ہے وہ قرآن کریم ہے قرآن کس طرح زندگی کو بدلتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد کیسے زندگی ایک نیا رنگ لیتی ہے یہ میری بات تو نہیں ہے یہ تو آپ کو وہ لوگ بتائیں گے کہ جن کی زندگیوں میں کتاب آتی ہے ہمیں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جس کے ارد گرد ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں کہ جو اپنی شیئرنگس کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی جو چیز میرا بھی اس قرآن کے سفر کا آغاز بنی تھی آج سے بہت سال پہلے وہ یہی تھی کہ قرآن میں کیا بات ہے کہ جو اس کو شعور سے پڑھتا ہے اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آنے لگتی ہے اور اس طرح کرتے کراتے یعنی کہہ لیجئے کہ وہ سفر چلتا گیا اور چلتے چلتے واقعی اس راز کو پا لیا کہ یہ قرآن دلوں کی شفا ہے بیماریوں کی دوا ہے دکھوں کا درد ہے دکھوں کا آپ کہہ لیجئے کہ درما ہے آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہیں بھی دیکھ لیں آپ بالکل نہ کہیے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو شاید پاکستان کی بات میں کہوں گی آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیجئے آج انسانیت دکھی ہے آج انسان پریشان ہے सब नेमते हैं। आप कहते हैं कि शायद बाहर चले जाएं तो सारे गम दूर हो जाते हैं। जो बाहर रहते हैं उनसे पूछिए, वो कहेंगे आप अपने मुल्कों के रहने वाले, ठीक है बिजली पानी इतना बड़ा गम नहीं होता, मक्खियां भी आ जाएं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनके गम भी बड़े हैं जैसे उनकी नेमते और आसाइशें बड़ी हैं। क्या वजह है? यानी जो चीज़ मुझे इस मौजू पर बात करने पर माइल कर रही है वो क्या है? आखिर क्या वजह है कि आज इंसानियत सब कुछ होते हुए भी परेशान है? दौलत वालों के पास दौलत तो है, लेकिन दौलत से जो सुकून और खुशी पानी थी वो नहीं मिल रही। चीज़ें पाली, आप कह लीजिए कि सामान्य आसाइश मौजूद है, खुशी नहीं है, है कि नहीं? आज लग्जरियस लाइफ मौजूद है, लग्जरीज ऑफ वर्ल्ड मौजूद है, लेकिन जो एक प्लेयर, एक खुशी जिसको जिंदगी का खुलासा कहा जा सकता है, वो नहीं दिखता। तो लोगों ने तो इसको बहुत मुख्तलिफ अंदाज में समझा। मैंने जब अल्लाह की किताब पढ़ी तो मुझे ऐसे ही लगा कि आज के दौर में लोगों को ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि आपकी खुशियों भरी ज़िंदगी का आगाज़ इस कुरान को समझने और इस पे गौर व फिक्र और फिर इसके मुताबिक अमल की कोशिशों से होगा। बचपन से मैं ये किताब क्या कह के पढ़ाई गई? बरकत की किताब। ऐसे ही है ना, कुरान पढ़ने से बरकत होती है, घर में कुरान हो तो बहुत बरकत है। फिर एक और कॉन्सेप्ट हमारे कल्चर में बहुत आम है कि कुरान पढ़ने से जिन्नात और भूत भाग जाते हैं। किसी पे जादू हो तो मोस्टली मौलवी साहब को बुलाकर लोग कुरान पाक की आयतों की तिलावत करवाते हैं। यानी ये सब कुछ मेरे और आपके लिए कोई नया नहीं है। फिर एक और चीज़ आपने भी देखी होगी और वो क्या है कि जब किसी की बच्ची की शादी होती है तो लोग दुल्हन के सर पर कुरान पाक को रख देते हैं रुख्सती के वक्त और कहते हैं कि आज हमने इसको कुरान के साए में रुख्सत की है, राइट? ऐसा भी एक तस्वीर हमारे कल्चर में मौजूद है। फिर एक और कुरान का फ़ायदा जो हमने बचपन से देखा वो क्या है कि जब किसी को कसम खानी होती है तो कौलो कसम खाते हुए कहते हैं कुरान की कसम। या किसी की बात का यकीन करना कराना हो तो क्या कह सकते हैं कि जी मुझे कुरान की कसम या मैं झूठ नहीं बोल रहा, राइट? ये तो नहीं है कि हमारे कल्चर में कुरान का कोई रिवाज नहीं है। वो माहिरुल कादरी साहब की एक बड़ी मारूफ पोइम भी है ना कि ताकों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, किस बस में मेरी धूम नहीं, किस उर्स में मेरा जिक्र नहीं। यानी काफ़ी चीज़ों के बाद आखिर में कहा जाता है फिर भी मैं तनहा रहता हूँ, कोई मुझसे भी मजलूम नहीं, कानून पे राजी गैरों के, मोहब्बत से दावे मेरे साथ। तो देखा जाए तो उसमें बड़ा दर्द है। उस पर एक लेक्चर भी हो सकता है सदका जारिया सीरीज में आज भी आया हो जिसका टॉपिक कुछ इसी तरह से कि कुरान किताबें हिदायत है। लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की है वो ये है कि कुरान से हमने बहुत सारे फ़ायदे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस मकसद के लिए ये कुरान नाजिल किया गया था उससे उतना फ़ायदा नहीं उठाया। छोटी सी मिसाल दूंगी कि जैसे हर काम करने के किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं ना, मसलन सेलफोन है आपके हाथ में, इसका एक बुनियादी मकसद है और वो कह के ये आपका रब्ता करवा दे, आपको दूसरों से मिला दे, मुश्किल में है किसी से बात करनी है, यानी इसका मकसद रब्ता है। अब अगर कोई सेलफोन को इसलिए ना यूज़ करे कि इसमें सिम डाली तो फिर उसमें पैसे पड़ेंगे, फिर मिनट्स पड़ेंगे, फिर घर में घंटी की आवाज़ आएगी, फिर हो सकता है मुझे कभी डिस्टर्बेंस हो, या शायद इस टेलीफोन के ज़रिए से मुझे कोई बुरी खबर मिल जाए, किसी के मरने की, जीने की, जो भी एक्सपेक्टेड थिंग्स है, आप वो सेलफोन को एज अ फ़ोन तो ना यूज़ करें लेकिन इसको दूसरे कामों में यूज़ करें, कोई और इससे साइड का इशू लेना चाहे। आज तो सेलफोन हर मर्ज की दवा बन गया ना, लेकिन फ़ोन के अंदर ही वो कहते हैं ना कि सेलफोन आया तो पहले घड़ी गई, फिर उसके बाद टाइम पीस गया, और फिर उसके बाद कैमरा गया, और लंबा चौड़ा एक मैसेज आता रहता है व्हाट्सएप पे, आपको भी कहीं मिला होगा। यदि उसने ये लिखा था कि सेलफोन आया तो इसी में बैटरी भी आ गई, आप रात के अंधेरे में वो डालने की बजाय सेलफोन से खोल लें, अलार्म भी आ गया, आपका नेविगेटर भी चला गया। पहले कितने डिफरेंट टूल्स थे, आप अपने साथ कैमरा रखते थे, वीडियो कैमरा रखते थे अगर आप कहीं साइट सीइंग पे जाते हैं तो। उन्होंने कहा इस फ़ोन ने माशाल्लाह सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, और सब कुछ के बद एंड पे लिखा हुआ था सेलफोन आया तो नींद भी गई और आराम भी गया और सुख भी गया और चैन भी गया। इट्स ट्रू, यानी हर चीज़ के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। कोई चीज़ अपनी जगह पर ना तो बहुत अच्छी होती है ना बुरी होती है, असल चीज़ है कि आप उसे इस्तेमाल क्या करते हैं। लेकिन अगर आप कोई सेल फोन इसलिए ना उठाए कि उठा लिया तो पैसे पड़ेंगे, फ़ोन कर दिया तो पैसे पड़ेंगे, तो जिसने आपको सेलफोन ख़रीद के दिया है वो किसी बहुत मुश्किल में आपको कॉल पे कॉल किए जा रहा है लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रही, तो बाद में आके आपसे पूछे कि भाई आप बेगम अपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं उस वक्त मुझे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी, तो आप कहते नहीं ना फ़ोन से ऐसी खाम का मिनट पड़ेंगे, पैसे पड़ेंगे, तो थोड़ी देर बाद तो आपने आ ही जाना था, तो उनको गुस्सा आएगा ना। मिसाल समझ गए? जिस बड़े मकसद के लिए एक चीज़ होती है ना, जब तक हम वो मकसद नहीं पूरा करते उस वक्त तक हमें छोटे छोटे काम उससे लिए हुए फायदा नहीं देते। आप कहती है देखे ना मैं इसको एज अ टार्च भी तो यूज करती हूँ, तो कहेंगे अल्लाह की बंदी मैंने आपको 60-70 हज़ार रुपए का फोन इसलिए तो नहीं लेके दिया कि आप टार्च लें, वो तो मैं आपको 200 रुपए की भी ला देता। भाई मैं इसमें देखे घड़ी भी तो यूज करती हूँ इसकी, तो आप कहते हैं घड़ी का क्या, वो 200 की आती है। मतलब बात का क्या हुआ कि जब आप किसी भी चीज को उसके असल मकसद से हट के इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप उसकी नाकदरी करते हैं। असल ये बात है, किसी भी चीज की कदर क्या होती है, जिस बड़े मकसद के लिए वो चीज बनाई गई है, आप वो मकसद हासिल कर लें, फिर बाकी चीजें उसके बाद चलती रहेंगी। तो आइए जरा देखें कि कुरान किस मकसद के लिए नाजिल हुआ। क्या कुरान सिर्फ बरकतों के लिए, जिन्नों को भगाने के लिए, कौलो कसम में इकरार के लिए, या अदालतों में हाथों पर फाने के लिए उठाया गया? ये कुरान तो वो दौलत थी जिसने लोगों की हालत बदल दी। आप कह लीजिए कि अरब बद्दू थे, गंवार थे, जाहिल थे, बकरियों के चरवाहे थे, नंगे पांव फिरते थे, उनके पांव फटे होते थे, उनके जिस्म पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन ये कुरान था, ये किताब थी जिसकी खिदमत ने उनको दुनिया का लीडर बना दिया। वो उतरकर सुए हरम से कोई आया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हिरा में जाकर इबादत किया करते थे, वहां क्या मिला था उनको कि जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद रसूलुल्लाह में बदल दिया। यानी आज एक नुक्ते पे गौर कीजिएगा, कुरान के जिसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह में बदला। क्या हम कहते हैं किताबों में सीरत पढ़ते हुए कि उम्र मुबारक जब 40 साल की हुई तो आप हस्बे आदत गारे हिरा में इबादत के लिए जमा थे और आपके पास फरिश्ता आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम और उन्होंने आपको कहा कि इकरा बिस्मी रब्बी का लजी खलक। सबको पता है ना वो वही किसकी थी, वो आयतें किसकी थी, वो कुरान की आयतें थी। अगर कुरान ना नाजिल होता तो मोहम्मद कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बनते। इतनी बड़ी किताब है, एक आम इंसान, एक बिल्कुल बशर, जिसको आप कह लीजिए कि उससे पहले तो देखा जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही का मजहब था ना। अगर उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मत ही होते। अब ये बात जिनको नहीं समझ आए मुझे माफ कर दें, और जिनको समझ आ रही है सीरत पढ़ी है, बहुत आसान बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी ना, वो आखिरी नबी थे और उसके बाद आप आ गए। उस दौर में जिन्होंने हजरत ईसा के मैसेज को सही तरह से समझा वो मुसलमान थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक उम्मत की होती, लेकिन अल्लाह ताला ने लहजा लहजा लम्हा लम्हा आपको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा और उसके बाद आपको रसूल बना दिया। वजह क्या है? अब आप देखिए कि नबी सल्लम को जब कुरान दिया गया ऐसे ही खड़े खड़े दे दिया। अल्लाह का नबी तो बचपन से ही इशारे तो नजर आ ही रहे थे। आपने सीरत के सेशन में सुना होगा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा है और बेचारा बच्चा अभी माँ के पेट में है तो बाप दुनिया से चला गया। थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिए, बहुत मोहब्बत आती है अल्लाह के नबी के साथ जब हम ये बातें करते हैं और सुनते हैं। एक वो शख्स जिसका दुनियावी स्टेटस क्या दिख रहा है, बिन बाप के पैदा हुआ, आप अपने ऊपर लीजिए, अल्लाह ना करे सबको अल्लाह ताला हादसात से महफूज रखे, अगर हमारे खानदान में हमारे घरों में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए कि उसकी पैदाइश से पहले बाप का इंतकाल हो चुका हो तो हम उस बच्चे को कितना काबिले रहम समझेंगे। अल्लाह के नबी ऐसे ही थे। सारी औरतें आईं गांव से और बच्चों को लेके चली गईं और छोड़ गईं तो अब्दुल मुतलिब के पोते को छोड़ गईं। कहने लगी इससे क्या मिलना है, ये तो गरीब दादा है। हलीमा सादिया के नसीब जाग गए, कहने लगी चले कुछ नहीं है तो इसको ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना, उन्होंने अल्लाह के नबी को गोद ले लिया। जो ही अल्लाह के नबी उस औरत की गोद में गए उसने अपने घर में अपने जिस्म में अपनी बकरी के दूध में अपनी बेरी के पत्तों में वो मोजज़ा देखे। कहने लगी ये कोई खास बच्चा आ गया मेरे घर में। सूखा दूध उतरने लगा, बकरी के थन दूध से भर गए, क्या कुछ बरकतें हुई। इतनी बरकतें अल्लाह के नबी सल्लम के वजूद की हलीमा सादिया ने देखी कि खौफजदा हो गई, सारे शहर में धूम मच गई। कहने लगे जहां हलीमा की बकरियां जाती हैं तुम भी अपनी बकरियों को वहां चराओ, सारे शहर में ड्राउट है, कहत पड़ा हुआ है, खुश्की की वजह से बच्चे भूख से मर रहे हैं, बकरियों के थनों में दूध नहीं है, सारा शहर ऐसे और हलीमा की बकरियां आती हैं दूध थनों से भरा होता है। गांव के लोग बातें करने शुरू होते हैं, भाई सोचो ये किधर जाती हैं, जरा पीछा करो। एग्जैक्टली उसी खेत में उनकी भी बकरियां अगले दिन जाती जहां से उनकी बकरियां जाती थी चुगने के लिए, लेकिन वो भूखी आती इनका पेट भरा होता। ये किसकी बरकत थी? ये एक बच्चा नबी, अभी बच्चा है, अभी नबूवत नहीं मिली, ये निशानियां हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के ये छोटे छोटे मोजज़ात दिखते हैं ना, लेकिन जो बात जिस चीज ने डिक्लेयर किया जिस बात के बाद दुनिया को ये पता चल गया कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये शख्स जिसका किरदार अच्छा, जिसको सादिक कहा गया, जिसको अमीन कहा गया, जो सारे शहर की आंखों का तारा था, लेकिन उस बच्चे को बाज़ाब्ता तौर पे नबूवत का ताज पहनाया गया जब इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक की आयतें उतरी। तो ये कुरान था। अब यहाँ चंद बातें मैं और आप अपने आप से करते हैं। कभी हमने इस बात पे गौर किया कि इस कुरान में मेरे लिए क्या है? सूरत अल-अंबिया में अल्लाह ताला कहते हैं वफीही ज़िक्रुकुम, लोगों इसमें तुम्हारा जिक्र है। अफला ताकिलुन, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? अभी हमने सूरत अल-हाका की तिलावत सुनी और कारी साहब रो रो के हाल बुरा कर रहे थे, हमें क्यों नहीं कुछ होता? हमारे भी घरों में कुरान पढ़े जाते हैं, रमज़ान में हम भी एक से शायद ज़्यादा ही कुरान पढ़ते होंगे, हमारी मस्जिदों से भी तरावियों की आवाज़ें आती हैं। क्या वजह है कि जब हम कुरान पढ़ते और सुनते हैं तो हमारी आंखें नहीं भीगती, हमारा दिल माइल नहीं होता? देखिए, जो बात दिल से निकलती है ना, वो असर रखती है। हमें हर उस बंदे की बात सुनकर समझ आती है जिसकी बात में जज्बात शामिल होते हैं और जिसकी जुबान हमें समझ आती है। आप बेहतरीन से बेहतरीन इंग्लिश का लेक्चर किसी ऐसे शख्स के सामने रख दें जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सुन तो लेगा, अदब में बैठा रहेगा, लेकिन क्या सीखा? कुछ नहीं पता। मजा आया, नींद आई, ऐसी कहेगा ना? क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। इसके बरक्स अगर उसी हॉल में एक इंग्लिश समझने वाला शख्स हो सकता है वो रो रहा हो सकता है आज वो अपने लिए ज़िंदगी चेंज करने का एक लाहे अमर लिखकर जाए। तो बस यही सवाल है, जितनी बात मुझे अपने जैसे इंसानों की समझ आती है, क्या उतनी भी बात मुझे अपने मालिक के इस कुरान की समझ आती है जब मैं पढ़ती हूँ? मेरी आदत है स्क्रीन खोलकर उस पर तिलावत खोलती हूँ, मेरे सामने अभी भी सीधी सादी आयतें खुली हुई हैं, अगर मैं देखना चाहूँ देख लूँ, लेकिन मैं तर्जमा नहीं खोलती। लेकिन यहाँ स्क्रीन थोड़ी दूर है, मुश्किल होगा आपको देखने में, आप अपने तसव्वुर की आंखों में अपना कोई सिपारा खोल लीजिए जिसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ अरबी हो। कितनी अपनी लगती है, क्या ताल्लुक है उसका मेरी जिंदगी में? हम बरकत तो रखते हैं, प्यार भी करते हैं, गिर जाए तो चूमते भी हैं, आटा भी उसके वजन का दे देते होंगे, लेकिन इस किताब से मुझे मिलता क्या है? और सूरत अल-हाका का जिक्र मैंने इसलिए किया कि ये वो सूरत थी कि जिसने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो की जिंदगी में एक बड़ा गहरा असर डाला था, ग्रेट इम्पैक्ट। वो कहते हैं कि जब मेरे दिल में सूरत अल-हाका की आयतें सुनी थी तो यकीन आ गया था कि ये कुरान सच्चा है। अब मैं सूरत पूरी नहीं देती क्योंकि आपके हाथों में भी नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी या आपको कह लीजिए कि सिर्फ एक याद दहानी के लिए थोड़ा सा सूरत अल-हाका का ज़माना नज़ूल और उस दौर में कुरान की क्या थी, थोड़ा सा इसको सामने रखो, इंजॉय करेंगे। है इंटरेस्ट इस चीज़ से कि जब ये कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक़्त लोगों को कैसे लगता था? हमने तो इसको बड़ी अच्छी सजी सजाई किताब की सूरत में देख लिया ना, उस दौर में तो ऐसा नहीं था। तो बेसिकली सूरत अल-हाका का जो नाम है ना, अल-हाकतुम अल-हाका, ये क़यामत का नाम है। अब ज़रा इस लफ्ज़ पे थोड़ा सा गौर करें, अपने जहन की खिड़कियों में खोल लें, और अगर आपके हाथों में फ़ोन है तो आप सूरत अल-हाका खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन यह है कि आप तवज्जो इसमें रखें, सूरत अल-हाका को अल-हाका क्यों कहते हैं? हक होने वाली, अल-हाकतुम अल-हाका वमा अदराकुम अल-हाका। बेसिकली सूरत अल-हाका जो है क़यामत के नामों में से एक सूरत है, मक्की दौर के बिल्कुल इब्तदाई दौर की कहानी थी। मैंने ये बात आज क्यों कही इस वक्त कि सच बताऊं, आप थोड़ा सा अपने शऊर को सामने लाएं, आज हम मुसलमानों का जो दौर गुजर रहा है ना, मैं नहीं कहती कि अमेरिका से बात, आप मुझसे पूछ लें आप कहाँ से आई हैं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मैं अमेरिका से भी आई हूँ, मैं यूके से भी आई हूँ, मैं नॉर्वे से भी आई हूँ। मैं अभी सिर्फ पिछले आज से लेके एक हफ्ते की पीछे ले जाऊँ जहन को, तो मैं इन तीनों मुल्कों के अंदर से गुजरी भी हूँ और जहाँ से भी गुजरी होंगी। बात समझ रहे हैं? दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, बीइंग अ नेशन, मुसलमान आज हकीकत में मक्का के इब्तदाई दौर से गुजरे हैं। वो आप इस्लाम की बेगानगीत को देख लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या दीन उबदा गरीबन, ये दीन गुरबत और अजनबियत से शुरू हुआ, यानी जब ये दीन आया था तो जिसने सच्चा दीन इख्तियार किया लोग उसको अजनबी समझते थे, स्ट्रेंजर, अजनबी। मैं तो ये दो दिन हुए मुझे पाकिस्तान के हद में आए हुए, आज पहला लेक्चर है और पिछला यानी रात को जो भी था, यानी ट्रैवलिंग की ट्रैवलिंग है, समझ लें कि आज कदम जमे एक जगह पे। मैं आपको सच कह सकती हूँ, आप माइंड ना कीजिएगा, मुझे आपसे ज़्यादा पाकिस्तान से हो सकता है प्यार होगा। हम दूर रहने वाले अपने मुल्क के लिए तड़पते हैं और रोते हैं, आपको पता है ये बात? अपने मुल्क वाले अपने चैनल्स में और फेसबुक्स पे यहाँ के लतीफ़े और यहाँ की सियासतदानों की बातें करते हैं ना, तो हम जैसे लोग जो बाहर घरों में रहते हैं ना, तो हम शर्मिंदा होते हैं। हमें इधर की टूटी हुई सड़कें और जब उबलते हुए गटर दिखाए जाते हैं, हमारा सर झुक जाता है। हम अपने मुल्क का चैनल किसी चार घरों में बैठ के नहीं देख सकते। वो कहते हैं आपके मुल्क में या गोलियां चलती हैं या ये होता है, और वहां हमें तो ऐसे लगता है हमारे अपने चैनल हमारे दुश्मन है, कि जो अपने घर की बात थी वो बाहर दूसरों को बताते हैं। मैं सच कहती हूँ, लेकिन 2 दिन हो गए मुझे सिर्फ इधर, और मुसलसल एयरपोर्ट्स पे हूँ। मैंने इसमें लाहौर का एयरपोर्ट भी देख लिया, मैंने कराची का भी देख लिया, जहां जहां से गुजरी मेरा दिल 1700 टुकड़ों में बटा हुआ है। रात पूरी एयरपोर्ट पे गुजरी है हमारी, जो मैंने औरतों के हुलिये देखे हैं, वल्लाही कसम खा सकती हूँ कि वो पैंट का फटी हुई पैंटें जो घुटनों से लेके कंधों, जो गोरों में भी हर एक नहीं पहनता, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से अपने मुल्क के एयरपोर्ट्स पे बैठी हुई औरतों को देखी है पहने हुए। जो मेरा दिल कटा रात को, मेरा तो दिल दर्द से इतना भर गया कि अल्लाह हमें दूसरों की बात क्या करनी है, हमें तो अभी अपने मुल्क में बेगानगियत लगती है, और हम जैसे लोगों को तो लोग शायद एलियन समझते होंगे। आप ये सोचते हैं ना कि गोरों में जाके अपने काफ स्काफ और हिजाब और अपने ड्रेस कोड के लिए मुस्लिम कहलाते हैं तो आपको बुरा लगता है। मैं सच कह सकती हूँ आपको कि अपने मुल्कों में आप, मैं सबकी बात नहीं करती, जो अच्छे रंग में हैं वो आज यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ एक ऐसा बड़ा तबका मौजूद है कि जिनके लिए इस्लाम अब अजनबी हो गया। ये सूरत अल-हाक़्क़ा भी बिल्कुल उसी दौर में नाजिल हुई थी, मक्का का इब्तदाई दौर था, अभी इतना जुल्म नहीं शुरू हुआ था, लेकिन लोगों ने नबी सल्लम की मुखालफत शुरू कर दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये मुसनद अहमद की रिवायत है, कहते हैं कि इस्लाम लाने से पहले एक रोज़ मैं नबी सल्लम को सताने के लिए घर से निकला। इमेजिन करें, अल्लाह का नबी कितना प्यारा, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपका वजूद एक रहमत था। इंसानियत जिसने आज इस्लाम नहीं भी कबूल किया ना, उन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल कर लिया। आज वेस्ट गुन गाता है मोहम्मद सल्लम के नाम के, एक लीडर के नाते से, एक कामयाब हुक्मरान होने के नाते से। वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देखिए, कई जगह उनकी गवाहियां पड़ी हुई हैं। कनाडा में एक जगह पूरा साल नबी सल्लम का नाम लगा रहा है, कैसे ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, कहीं कुछ कहीं कुछ, क्योंकि सच बोलता है। सूरज सूरज है, चाहे उसके आगे आप कितने पर्दे डाल दीजिए, अल्लाह के नबी को सताने की खातिर कहते हैं मैं निकला, और आप मुझसे पहले मस्जिद हरम में दाखिल हो चुके थे। अब देखिए जरा महसूस कीजिए, आज तुमर को अरबी आती थी ना, आती थी ना, अरबी आती थी, बिल्कुल आती थी, इस्लाम नहीं था। कहते कि मैंने वहां जाकर सुना तो नबी सल्लम सूरत अल हाका पढ़ रहे थे। कहते मैं पीछे खड़ा हुआ और सुनने लगा। जरा इमेजिन कीजिए, मैं ये जुमला बड़े दर्द के साथ बोलूंगी, उस दौर में काफिर कुरान को मानते नहीं थे, यानी दे डोंट बिलीव इन कुरान, लेकिन उनको कुरान सुन के मजा आता था। ये तो सिर्फ हजरत उमर की गवाही है ना, एक और रिवायत है, आप चाहें तो वो भी कहीं से जाके पढ़ सकते हैं, कि अहनस बिन शुरैक, अबू जहल और उनका एक और दोस्त, ये तीनों बड़े बड़े सरदार थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन जब कुरान सुनते थे ना तो इनको मजा आता था। तो इन्होंने गाहे बगाहे जब आपकी जुबान मुबारक से कुरान सुना और उसके तस्करे हुए, तो आपस में एक दिन बैठ के कहने लगे कि बात सुनो, ये हम इसकी बात सुनने जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो दूसरों को कैसे रोकेंगे? किसी को पता चल गया कि अबू जहल भी रात को कुरान सुनता है, फलां भी सुनता है, तो ये तो बड़ी बदनामी होगी, फिर तो हमारे आम लोग भी सुनने लग जाएंगे। कहा बात तो सच है, क्या करें? कहते चलो वादा करो, आज के बाद हम नहीं सुनेंगे। कहा अच्छा ठीक है, मैं भी करता हूँ। तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि आज के बाद नहीं सुनेंगे। लेकिन देखिए रात हुई, इनको पता था हरम में जाकर अल्लाह का ये बंदा रात को कुरान पढ़ता है। कहते हैं रात हुई तो गुदगुदी दिल में आई, जिसको आप कहें क्रेविंग, अर्ज, ख्वाहिश, एक उठा कहने लगा चलता हूँ, दूसरों को नहीं बताऊंगा, चोरी से जाता अपने दोस्तों से छुपाता हूँ। वो छुपके से गया, यही कैफियत दूसरे की भी हुई, यही तीसरे की, आज इस नीयत से जा रहे हैं के दोस्तों को नहीं बताएंगे, और वहां से जब पलटे तो तीनों की मुलाकात हो गई। तुम किधर? उसने कहा तुम किधर? उसने कहा तुम किधर? तुम क्यों आए? कहा जिस चीज ने तुम्हें निकाला उसी ने मुझे निकाला। अब ये जुमला गौर से सुनने का है, वो काफिर थे, उनको सवाब नहीं था, उनके लिए ये कुरान एक गाइड बुक नहीं थी, उनको कुरान सुनने की कितनी लज्जत थी। आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? हम कहते हैं किस मस्जिद में तरावियां पढ़ें जो फौरन खत्म हो जाए, कौन सी मस्जिद के इमाम साहब हैं जिनको नमाज छोटी पढ़ाने का शौक है? ये मुझे किसी ने रिसेंटली किसी ट्रिप में भी बताया कि एक मस्जिद के इमाम साहब को सिर्फ इसलिए फारिग करवा दिया गया कि वो फजर की नमाज बड़ी लंबी पढ़ाते थे। हालांकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा लंबी किरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज की करते थे। आज हम भी मुसलमानों को शौक क्यों नहीं रहा? आज हमारे कानों में अगर कुछ और चलता है और आवाज़ों के हम आदी हो गए हैं, कुरान से क्यों मोहब्बत नहीं? उमर कहते हैं कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और अल्लाह के नबी सूरत अल-हाक्का पढ़ रहे हैं और मैं इतना हैरान हूँ, इतना अल-हाक्कतुम अल-हाक्का वमा अदराकुम अल-हाक्का। कहते हैं मुझे लगा कि इस कलाम में तो शायरी का हुसन है, बिल्कुल वजन पे वजन चल रहा है ना। कहते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान से अगली आयत में आ गया, वमा हुआ बिकौली शायरिन। ये किसी शायर का कॉल तो नहीं है। कहते मैं डर गया कि अभी तो मैं दिल में सोच रहा हूँ कि ये शायरी कर रहा है तो इस बंदे की जुबान पे ये आ गया। कहता नहीं नहीं मैंने कहा हो ना हो ये शख्स काहिन है। कहा काहिन है? उससे अगली आयत अल्लाह के नबी ने वला भी कौली काहिन का, ये तो काहिन का भी कॉल नहीं है, आप तो कहते हैं कि मेरे दिल में बात पड़ गई, हो ना हो ये रब का कलाम है। ये कुरान उमर के दिल में इस्लाम का बीज डाल गया था। इजहार तो बाद में हुआ ना, आपने मशहूर वाक्य सुना होगा कि जब अपनी बहन के जुबान से सूरह तौहा सुनी और फिर जिद की और उनसे लिया। कहते हैं कि उस दिन तो जुबान पे आया था इस्लाम, ये दिल में अब आया है। और याद रखिए इस्लाम ईमान दिल में आते हुए टाइम लगता है, इसमें पूरी सीरीज है ईमान और जिंदगी की। पहले दिल पे आता है, फिर जुबान पे आता है, फिर सारी जिंदगी एक्शंस में रहता है। हमने पैदा होते खुद नहीं पढ़ा, हमारे कानों में आवाज आ गई, अशहदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदुन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, राइट? हमने तो शायद कलमा भी कभी सोच कर नहीं पढ़ा। ये जो बात कह रही हूँ इसको गौर से सुनिएगा। वेस्ट में हम बड़े खुश होते हैं उस दिन जब कोई नया शख्स आता है और इस्लाम का कलमा पढ़ता है, शहादा देना कहते हैं, अल्लाहु अकबर, तकबीर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद गूंज जाती है। क्या हुआ जी? आज एक अमेरिकन सिस्टर मुस्लिम हो गई, आज एक नॉर्थ सिस्टर मुस्लिम हो गई। वो तो सबके बीच में आके कहती हैं, पढ़ना भी नहीं आ रहा होता बेचारों को, अशहादु अल्लाह, जैसे वो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। और उस वक्त जो उनकी कैफियत होती है वो हमारी भी होती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो तो बोलते हैं सबके सामने, मैंने आपने कब बैठ के सबके सामने पढ़ा? अब अल्लाह ना करे ये रस्म ना शुरू हो जाए जैसे बिस्मिल्लाह की रस्म और आमीन की रस्म, तो अब कलमा पढ़ाने की भी रस्म हो। हमें तो अल्लाह ने मुसलमान माँ बाप दे दिए, हमने तो साथ ही साथ रखा। लेकिन याद रखिए कि जब शऊर के साथ एक दफ़ा कुरान दिल में आता है, ये जुबान पे आता है, तो दुनिया दिल की बदल जाती है।